मन तुरंत विकृत हो जाता है, या कोई हमारे विपरीत कर दिया तो क्रोध हो जाएगा, कभी लोभ हो जाएगा, कभी काम हो जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, इस तरह से मन विकृत होता है। विकृत होने का कारण यह है कि विषय में अनुरक्त है और विषय जो है भिन्न भिन्न है, एक समान है नहीं, तो भिन्न भिन्न विषयों के कारण भिन्न भिन्न होता रहता है। इस विकार को मैं देखा हूं, खास करके ट्रेन में चलते समय एक दो बार, कुछ आदमी चार पांच आदमी बैठे रहते हैं सीट पर और दूसरा व्यक्ति आता है तो कहते हैं कहां जगह है, जाओ आगे जाओ, यहां जगह नहीं। और तब तक कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जो परिचित था तो उसे कहता है वही मन आई 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 बैठी, तो वो कहते नहीं नहीं जगह नहीं, नहीं नहीं काफी जगह है, बहुत लोग बैठे। देखिए मन का विकृत हो रहा है। पहले दूसरा विषय मिला था जिसको अपना नहीं मानता था और अब अपना विषय मिल गया तो सात आदमी के दस आदमी ही बैठा लेगा, यह मन होता। इस तरह विकृत होता रहता है क्योंकि यह विषय से उपरक्त है और विषयों में उपरक्त क्यों है, क्यों विभिन्न विषयों में उपरक्त है, क्योंकि गुण प्रवाह ये हमेशा विषयों में जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, उनका संग करता है, इसमें उपरक्त हो जाता है। अच्छा, विषयों में क्यों उपरक्त होता है, गुण प्रवाह विषयों में क्यों भागता है, क्योंकि षोडशात्मा है। मैं एक प्रश्न उठता है कि भाई विषय में तो इंद्रियां जाती हैं, देह जाता है, मन क्या करता है उसमें, तो इसको जनहर्ज करें कि यही तो आत्मा है षोडश में। षोडश मतलब तो दस इंद्रियां, इस शरीर में दस इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां और पांच कर्म इंद्रियां और पांच महाभूत हैं, मिट्टी है, जल है, सांस वायु, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत और दस इंद्रियां, पंद्रह हुए और एक मन, सोलह। तो इस सोलह के बल में यही मालिक है, यही प्रेरक है, इसको षोडशात्मा कहते हैं। सोलह का प्रेरिता, जैसे आत्मा मतलब भगवान, वो सबको प्रेरित करते हैं, मत्ता स्मृति सर्व ज्ञान मतो हनम, उनको आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इन सोलह पदार्थों का यही आत्मा बना हुआ, यही मालिक है, यही ले जाता है कहीं इंद्रियों को या शरीर को, यही ले जाता है। अगर ये न जाए तो इंद्रिय जाएंगे। इस तरह से गुण प्रवाह में घूमता रहता है। तो विभ्रत प्रथम नाम अभिरूप भेदम अंतर बहिष्टम से पुरस्तम होती है, यही बहुत बहुत नाम और रूप के भेद से विषयों में भागता रहता है और आत्मा के लिए पुरस्तम होती विविध शरीरों को यही बनाता है और शरीरों द्वारा आत्मा को यही विविध विषयों में भटकाता रहता है। तो कभी अंत कभी बहिष्टम, अंत मतलब कभी बहुत अच्छा शरीर मिलता है और कभी बाहरी मतलब निकृष्ट शरीर मिलता है आत्मा। यह मन ही मुख्य कारण है, इसीलिए शास्त्र कहता है कि मनुष्य को मन का कहना नहीं करना चाहिए, गुरु करने का यही मतलब होता है। अब तक हम मन के अनुसार कर रहे थे, अब नहीं करेंगे, और दीक्षा का वास्तव में यही मतलब होता है। तत्कर्म संकल्प विकल्प कम मनो बुधो निरुंधा का भयम तपस्या, गुरु का मतलब ही होता है कि अब ये गुरु स्वीकार करता है कि इतना दिन मैं अपने मन के अनुसार किया और अब आपके अनुसार करूंगा, बस हो गया। और यदि मनुष्य गुरु के अनुसार करे और गुरु रियली यदि भगवान के अनुसार शास्त्र के अनुसार करे तो सारा काम ठीक हो गया। लेकिन मान लीजिए किसी ने स्वीकार किया गुरु कि मैं अब गुरु के अनुसार करूंगा और गुरु किसके अनुसार कर रहा है, अपने मन के अनुसार, तब तो टोटल मिलाकर वही घूम करके बात आ गई। गुरु का कर्तव्य है कि वह शास्त्र के अनुसार चले, अपने गुरु के अनुसार चले और अंततः फाइनल गुरु जो है वो शास्त्र के अनुसार है। और शास्त्र ही असली गाइड है, शास्त्र के अनुसार ही चलना है। शास्त्र को जज करते हैं गुरु और साधु, साधु शास्त्र गुरु तीन कहा जाता है। तो वास्तव में दो जो है वो इंफीरियर प्रमाण है, वास्तविक प्रमाण है शास्त्र, तो शास्त्र को जज करते हैं गुरु और साधु मिल करके, कि शास्त्र की उक्ति देश काल के अनुसार इस समय यह ठीक है, तो शास्त्र के अनुसार ये चलते हैं। और शास्त्र के अनुसार चलने का मतलब है भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, क्योंकि शास्त्र भगवान की इच्छा। तो इस तरह से मन की के अनुसार नहीं चलना, तो यही मन विविध शरीर की प्राप्ति कराता है। मरते समय जैसे शरीर के बारे में सोचेगा वही शरीर मिलेगा, देवता के भोग और देवताओं के शरीर को सोचेगा तो वो मिलेंगे, वो शरीर मिलेगा, और निकृष्ट शरीर सोचेगा तो वो शरीर मिलेगा। इस तरह से यही विविध शरीर पनौती विस्तार करता है, और इसके साथ ही साथ जो आत्मा को अनुभव होता है सुख दुख आदि का, ये मन कराता है। सुखम दुखम व्यतिरिक्तम च तीव्रम कालोपन्नम फलमा विनक्ति आलिंग माया रचितांतरात्मा स्वदेहिनम संसत चक्रकूट। मैं थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि सारी कथा पूरी करूं सात दिन के अंदर, भवातरी आदि सबका, इसीलिए लगभग 7:30 में बंद करूंगा। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? मैं भी नहीं कहूंगा तो छूट जाएगा सब, तब और 15 मिनट। इस आत्मा इस मन को जब भरत जी कह रहे हैं संस्कृति चक्र कूट, कूट का अर्थ होता है छाली, जैसे कूटनीति, कूटनीति का मतलब है छल नीति। कूट का अर्थ होता है छिपा हुआ, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, इसको कूट कहते हैं। और इस तरह के कायदा कानून जो अपनाता है उसको कहते हैं कूटनीति जानने वाला, कूटनीति। तो संस्कृति चक्र कूट है, यह मन जो है आत्मा को जन्म मरण में छलता है, रखे रहता है। संस्कृति मतलब जन्म मरण, यह जन्म मरण का चक्र है, उसी में लगाए रखना चाहता है। मन जानता है कि जिस दिन ये मुक्त हुआ उस दिन मैं गया, इसलिए मन चाहता है कि कभी मुक्त न होने पाए, कभी भक्त न होने पाए, ये मन चाहता है। तो इसको संस्कृति चक्र कूट कहते हैं। यहां कूट का अर्थ सुप्र सिद्ध स्वामी लिखते हैं ग्राम कूटक। किसी गांव में या किसी शहर के मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो किसी का नुकसान करने पर ही पड़े रहते हैं, झगड़ा लगाते हैं, खास करके उसको कूटनी बुढ़िया या कूटक कहते हैं। कुछ ऐसी बात कहना कि झगड़ा लगे और उसको हम धोखे में डालें, उसका नुकसान करें, जैसे मन करा, जैसे ग्राम कूटक कर, दो आदमी में बन रहा है झगड़ा लगाते हैं, चल कर। ऐसा हमने सुना है व्यक्ति के मुख से, एक गांव में झगड़ा लगाने वाली बुढ़िया थी, तो वो एक बार एक स्त्री पुरुष में झगड़ा नहीं लगा पाई, उनमें इतना बनता था पति पत्नी में, वो बहुत चिंता रहती चिंतित रहती थी कि इनमें कैसे झगड़ा लगाऊं, और नहीं लगा पाती थी, कोई उपाय नहीं सूझा। वो स्त्री पतिव्रता थी और पति बड़े स्नेहवान थे, पत्नी के प्रति झगड़ा नहीं लग रहा था, बड़ी चिंतित, सब जगह झगड़ा लगा दी और इनमें नहीं लग, तो उपाय सोचे। और एक दिन कही वो पति से पहले मिली और कहे कि बेटा तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छी है, बहुत सेवा परायणा है, पतिव्रता है, लेकिन एक इसमें दोष है, यह पूर्व जन्म में राक्षसी थी। तो पति सोचे कि भाई कुछ जानती होगी, वो मान लिए कि हाँ कोई बात नहीं, पहले राक्षसी रही होगी, इससे क्या पता नहीं पहले कौन क्या रहा है, आज तो राक्षसी नहीं है, तो कोई ध्यान नहीं दिया। तो इस पर उस बुढ़िया ने कह दिया, लेकिन बेटा पहले का संस्कार नहीं जाता है, सावधान रहना, हो सकता है तुम तो किसी दिन खाए, हो सकती है खाए। अच्छा, कि ये तो पक्ष कंप्लीट कर ले। और एक दिन वो पत्नी के साथ मिली, इनकी पत्नी के साथ, तो वो पति पत्नी से कहे कि बेटी तुम्हारा पति बहुत सुशील है, स्नेहवान है, मैं जानता हूं बहुत प्रेमी व्यक्ति है, लेकिन उसका एक स्वभाव है वो किसी न किसी दिन तुमको मारेगा। पहले का बहुत कड़ा स्वभाव का रहा है, ऐसे झूठ मूठ के कहे, पहले का बहुत कड़ा स्वभाव का है और तुमको वो छोड़ देगा। इससे और एक बात यह है कि उसके शरीर में बहुत अधिक नमक है, जितने तत्वों से शरीर बना है उसके शरीर में ज्यादा नमक ब्रह्मा जी ने डाला है। एक बात यह है तो बहुत जल्द गल भी सकता है तुम्हारा पति। नमक है शरीर में तो स्त्री को जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा हो गई कि आज देखी कि हमारे पति के शरीर में ज्यादा नमक है, तो रात में दोनों सोए थे तो उसके मन में इच्छा हुई कि उसके शरीर को जरा मैं चाट कर देखूं कि नमक है कि क्या है। तो बेचारी देखने की कोशिश की थी, जब तो या हाथ में कहीं भी वो चाटने की कोशिश की, तब तक वो हल्ला किया, अरे बाप रे बाप, दौड़ो 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 दौड़ो, तो राक्षसी मुझको खा रही है खा रही है खा रही है, अरे बाप रे बाप। अब गांव के लोग दौड़े, रात में क्या हुआ क्या हुआ, तो कहा मैं इसको घर से निकालता हूँ, राक्षसी है ये है वो है। सही सही माता जी ने कहा था कि मुझको खा जाएगी, अरे बाप रे बाप, जल्दी घर से निकालो जल्दी निकालो निकालो, वो झगड़ा लगा दे इस उपाय से। तो गांव में लोग ग्रहण करते, उसको कुटक कहते हैं, हमेशा दूसरे को दुख देना कोई न कोई बात कह कर। मंत्र का यही स्वभाव था। मंत्र के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब वो प्रेरित करके कैकेयी को भेज दी और बाद में राम वन में चले गए, तो ये पता लगाया कि कई लगाया गया कि कैकेयी थे वैसा बरवानी। तो भरत जी को पता लगाने पर कि मां को मंथरा ने प्रेरित किया, सब लोग पूछने लगे मंथरा कहां की है, कहां से आई है, तो किसी को पता नहीं था कि वो कहां की थी और किसकी बेटी थी, किस गांव की थी, किसी को पता नहीं था। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, तो बिना जाने सोचे समझे उसको दासी बना लिया था कहते हैं, और उसका दुष्परिणाम आया। किसी को अपना बंधु बनाने के पहले जानना चाहिए कि कैसा कुल है, खानदान है, कहाँ का है। तो उसने साफ कह दिया कि कैकेयी से कैकेयी ये जो सारा प्लान है राम को राज देने का, एक कौशल्या का, मैं पूरा पता लगा करके आई, किसी से पता नहीं लगाई, झूठ बोली कि कौशल्या का प्लान है, तुम्हारे बेटा को ननिहाल में रख दिया गया है और सोचते हैं कि वो आएगा तो प्रखर करेगा, इसलिए झगड़ा दे दिया गया, झगड़ा लग गया। तो ये जो मन है इसको हमेशा फिक्र रहती है कि आत्मा यदि कुछ लोग चला जाएगा तो मैं तो गया अब दुनिया से, इसलिए यह भजन न करने पाए हमेशा, इसको संस्कृति चक्रकूट कहते और माया रचिता अंतरात्मा, अंतरात्मा कहते हैं उपाधि को, यह माया के द्वारा बहिरंगा माया शक्ति के द्वारा रचा गया है आत्मा के कौभर के रूप में, इसको उपाधि कहते हैं। उपाधि का मतलब होता है कि आत्मा यह मान लेता है कि मैं मन हूं, मन में और अपने में भेद नहीं मानता, इसको उपाधि कहते हैं। जैसे मुझको एक चादर ओढ़ाया गया और मैं ये सोचूं कि मैं चादर हूं, इस तरह से मन के साथ अभेद देखने लगता है। मन तो जड़ है, आत्मा का आलिंगन करके स्वदेहिनम आलिंग्य, आत्मा को अपने अधिकार में लेकर उसकी चेतना से यह चेतनी भूत होकर के काम करता है, और ये अलग होगा तो जड़ होगा, ये काम नहीं कर सकता है। चेतना लेता है आत्मा की और प्लान सारा अपना रखता है, इस तरह से काम करता है। जैसे किसी धनी आदमी के पुत्र को कोई बदमाश अपने चंगुल में फंसा ले और पैसा उससे ले और सारा काम करावे अपना, उस तरह से मन जो है वो आत्मा की चेतना ले रहा है, इससे वो चेतनीभूत होकर काम कर रहा है। यह संस्कृति चक्र कूट में, संस्कृति चक्र में आत्मा को रखना चाहता है और जहां जाता है तो इसी के कारण सुख मिलता है, दुख मिलता है, या व्यतिरिक्तम दोनों दोनों से मिला हुआ सुख दुख दोनों, या तीव्रम अवश्यम भारी फल, काल उपस्थित करता है फल सुख दुख जो भी, लेकिन यह मन अनुभव करता है, आत्मा को अनुभव कराता है, ये सुख दुख अनुभव कराता है। तो माया ये आत्मा को अपने आलिंगन में ले लिया है, स्वदेहिनम अपने देही को आत्मा को उसको फंसाए रखता है। तावान अयम व्यवहार सदाई क्षेत्र के साक्ष्य भौतिक स्थूल सूक्ष्म तस्मान मनोलिंग मदोगदन के गुणा गुण पश्च परावर्ष। तब तक यह व्यवहार सदा आत्मा के सामने प्रकट रहता है, जीव को भोगना पड़ता है, मन की करतूत आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब तक जब तक यह व्यवहार प्रकट रहता है। और कब तक प्रकट रहता है, तब तक यह प्रकट रहता है, तारा नवन व्यवहार सदा ही सदा प्रकट रहता है क्षेत्र के साक्ष्य, क्षेत्र के कहते हैं जीव को, करता है गलती मन, लेकिन क्षेत्रज्ञ को भोगना पड़ता है, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा को, और यह व्यवहार उसके सामने प्रकट रहता है स्थूल या सूक्ष्म। जब यह सोता है तब वह सूक्ष्म रहता है सपने में, और जागृत में बिल्कुल प्रकट रहता है। जब बच्चा रहता है आदमी उस समय भी व्यवहार जो किया है कर्म फल किया है वो रहता है, लेकिन सुप्त रहता है, जवान होते ही वो उभर आता है, ये सदा रहता है जीव के साथ। इसलिए तस्मात मनोलिंगम मदोबदन के गुणा गुणत्व से परावर्त है, इस मन को ही विद्वान लोग कहते हैं कि यह जीव के माया बंधन का और माया से खोलने का दोनों का यही कारण है। लेकिन एक खुशी की बात है कि यही माया से खोल भी सकता है, गुणा गुणत्व से परावर्त है, गुणत्व और अगुणत्व का यही कारण है। जीव माया में बंधा हुआ है मन के कारण, और खुलेगा मन के कारण, यही खोलेगा। कब खोलेगा इसको बता रहे हैं, बड़ा सैद्धांतिक श्लोक है, गुणानुरक्तम व्यसनाय जंत, जब यह प्रकृति के गुणों में पदार्थों में अनुरक्त होता है तब व्यसनाय जीव के दुख का कारण हो जाता है। लेकिन क्षेमा में नैर्गुण मथो मनस्या, लेकिन जब नैर्गुण प्रकृति से परे भगवान के रूप आदि का जब चिंतन करता है मन, तब क्षमाया यही आत्मा का हित करने वाला हो जाता है। जो भक्ति कर रहे भागवत में आए हैं वो भी मन के कारण आए हैं, और जो पाप करते हैं वो भी अपने मन के कारण करते हैं, तो मन मुक्त भी करता है, लेकिन यह आत्मा के विवेक पर निर्भर करता है। जो मन को भगवान की तरफ लगाएगा तब मन हित करेगा, और विषय में लगाएगा तो अहित कर देगा, ये ऐसा मन है। तो अपने मन को हमेशा समझाना चाहिए, भज हो रे मन श्री नंद नंदना अभय चरणार्थी करे, मन की बहुत शिक्षा है। रघुनाथ गोस्वामी ने एक मन शिक्षा लिखा, मन को उपदेश, इसको लगाना चाहिए भगवान की तरफ, अगर लग जाएगा तो इतना बलवान है कि फिर आपको इधर कितने का घर नहीं जाने देगा। कभी कभी लोग बुलाते हैं घर के लोग, आओ आओ, तो कहते हमारा मन नहीं करता है, देखो मन टिक गए मंदिर में, वही मन जो उसको इधर उधर ले जाता था भगवान के संपर्क में आने पर वो इधर टिक जाता है। तो एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दीपक जब तक घी और बाती से युक्त रहता है, जलता रहता है, तब तक धुआं उगलता है। जथा प्रदीपो घृतवर्त मस्मन शिखा सधुमा भरती यमदासो, जब तक तेल युक्त बाती रहती है तो दीपक से धुआं निकलता रहता है, लेकिन जब तेल समाप्त हो जाता है और बाती भी समाप्त हो जाती है तब वह अपने स्वरूप में लीन होता है। लीन का मतलब पंच सत्य में जो उसका स्वरूप है उस रूप में हो जाता है। अच्छा, इसका अर्थ यह है, मान लीजिए कोई दीपक है और यदि वह घी और बाती से जल रहा है, बाती समझते हैं कपड़े का लंबा तेल में स्थित, तो वो धुआं उगलता है, लेकिन वही दीपक यदि सोना को खाने के लिए दिया जाए, दीपक का अग्नि से अगर अग्नि घी युक्त बातें को जलाएगा तो धुआं निकलेगा अग्नि से, लेकिन वही अग्नि यदि सोना के पिंड को जलाएगा तप्त कांचन सोना को, तो आग में से धुआं नहीं निकलता है बल्कि दीप्ति निकलती है, पीत वर्ण की दीप्ति निकलती है। तो उसी तरह से मन जब विषयों को पकड़ता है, देखता है, सुनता है, खाता है, तो इसकी मलिन वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, फिर राग रोष क्रोध संसार की तरफ। लेकिन जब ही इसको हम भगवान का रूप देते हैं, भगवान का नाम गुण, तब यह बिल्कुल स्वच्छ वृत्ति में आ जाता है। तो पदम तथा गुण कर्मानुबद्धम वृत्तिर्मनः श्रयतन्य प्रतत्वम्। तो जब गुण कर्मानुबद्ध रहता है, प्रकृति के पदार्थों को भोगता है, तब तक वृत्ति ही श्रयत है। तो संसारिक वृत्ति में, वृत्ति मतलब वही, आगे कल वृत्ति का वर्णन किया जाएगा, वृत्ति का क्या मतलब होता है। तो संसारिक वृत्तियों में रहता है और अन्यत्र, और यदि अन्यत्र उसको ले जाता है तो तत्व श्रयत, तत्व का अर्थ है भगवान का माधुर्य भोगने में लग जाता है। आत्मा का कर्तव्य है कि मन को वो पर से भगवान का माधुर्य पर से, नहीं तो ये ले जाएगा खंडक में, ये गर्त में ले जाएगा, ये बहुत बलवान है, इसको कुछ चाहिए। तो मन को भगवान का माधुर्य देना चाहिए, भगवान का रूप नाम गुण लीला ऐसे वातावरण रखना चाहिए कि मन लगा रहे। यदि नहीं लगा रहेगा कृष्ण में तो खींच कर ले जाएगा दूसरे तरफ, और इधर यदि आप लगा देंगे तो आपको खींच करके लाएगा, इधर आत्मा को भी खींच लाएगा, घसीट लाएगा। चलो, तो मन ही कारण है। तो इस तरह से व्यवहार में ही बता रहे हैं, व्यवहार में तुम अपने को मान रहे हो मैं राजा हूं, ये प्रजा है, ये है वो है, सब मन के कारण है। तो मन को अब यहां पर सिद्धांत बता रहे हैं कि मन से अगर तुम अपने को सोचोगे मैं राजा हूं, मैं भोगी हूं, मैं सुखी हूं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम्हारा अहित होगा। और उसी मन से जब तुम सोचोगे मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, तत्व सब तत्व, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, उनकी भक्ति करनी है, ये करना है, वो करना है, तब वह मन तुमको ले जाएगा तत्व की ओर, कृष्ण की ओर ले जाएगा, भगवान की ओर। तो मन ही वास्तव में संसार बंधन का कारण है या संसार से मुक्ति का। इस पूरे उपाख्यान का सार यही है कि हमें अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए, व्यवहार में नहीं फंसाना चाहिए, व्यवहार में रहते हुए भी मन को भगवान में अभिनिविष्ट रखना है।
तो इसके पहले यह वर्णन हुआ था कि मन जब संसारिक विषयों का सेवन करता है तो यह मलिन हो जाता है, और यही मन जब भगवान का आश्रय लेता है, दिव्य विषयों का सेवन करता है, भगवदीय रूप रस गंध आदि का शब्द का, तो यह अपने स्वरूप में होता है और आत्मा को मुक्त कर देता है। तो मन की क्या क्या वृत्तियां हैं, मन के कौन कौन कार्य हैं और मन कहां कहां कार्य करता है, इसको इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो कहते हैं एकादशासन मनुष्य उद्दित आपूतय पंच धियो विमान, पंच आपूतय, आकृति कहते हैं कर्मेंद्रिय को, पांच वृत्तियां हैं, ग्यारह वृत्तियां। वृत्ति का अर्थ होता है रूपांतरण, अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे जितनी भी वस्तुएं हैं यह भूमि की वृत्ति कही जाएगी, लकड़ी भूमि की वृत्ति है, भूमि ही इस रूप में परिणत हुई है। तो मन किस किस रूप में परिणत होता है और कहां कहां इसके कौन कौन स्थान है, इसका वर्णन करते हैं। तो पंच आकुतय और पंच धीय, पांच पांच दस, पांच ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय हैं उनको धीय कहते हैं, धीय मानी बुद्धि मन ज्ञान, और ये पांच हैं, और पांच आकृति कर्मेंद्रिय के विषय। कर्मेंद्रियां और एक अभिमान अहंकार, ये 11 मन के विषय है। मन इस रूप में कार्य करता है, मैं काम कर रहा हूं, 5 प्रकार से मानता है। मैं चल रहा हूं, मैं हाथ से काम कर रहा हूं, या मैं प्रस्राव कर रहा हूं, पेशाब कर रहा हूं, शौच कर रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं। ये 5 प्रकार से ये इसके मन के कार्य है। मन सोचता है कि मैं कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, और इसी तरह से मन की ये वृत्ति है कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं रस का अनुभव कर रहा हूं, मैं स्पर्श का अनुभव कर रहा हूं, मैं गंध ले रहा हूं। 5 प्रकार से यह कार्य करता है। वास्तव में आत्मा नहीं देख रहा है, आत्मा इन प्राकृतिक पदार्थों को नहीं देख रहा है, और न वो काम कर रहा है, न वो पेशाब कर रहा है, न वो कुछ कर रहा है, करता है मन। ये मन का कार्य है। तो 5 प्रकार से वो ज्ञान प्राप्त करता है। ये 5 धीय और 5 आकुतय और 1 अहंकार। मन मानता है कि मैं यह हूं, आत्मा वास्तव में नहीं मान रहा है कि मैं देह हूं, ये हूं, वो हूं। वास्तव में मन मानता है कि मैं काला हूं, या मैं गोरा हूं, मैं धनी हूं, मैं बंबई वाला हूं, या यहां वाला हूं, वहां वाला हूं। तो मन मानता है। तो ये जो मान्यता है इसको अहम या अहंकार कहते हैं। तो यह 1 है, और 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का कार्य और ज्ञानेन्द्रियों का कार्य, उनके द्वारा मन ही काम करता है, इसलिए उनको भी मन का कार्य कहा गया है। ज्ञानेन्द्रियों का जो कार्य है उसको भी मन करता है, और कर्मेंद्रियों का। तो 5, 5, 10 और 1, 11 एकादशासन मनसो हितय आकुच आकुतय पंच धीय अभिमान। ये 11 मन की वृत्तियां, मन इस तरह कार्य करता है। अच्छा, और मन के भूमि फील्ड मतलब विषय कौन कौन है? यह तो इसका कार्य है चलना, बोलना, खाना पीना, अपने को कुछ मानना। ये 11 प्रकार के इसके कार्य है। कहाँ कार्य करता है ये? जैसे मान लीजिए कोई आदमी बहुत बहुत काम करना जानता हो, लेकिन सबसे पहले उसको कोई ऑफिस चाहिए, कुर्सी चाहिए, भूमि चाहिए जहाँ वो करेगा, है ना? तो 11 प्रकार के इसके कार्य हैं, और 11 इसके आसन है। 11 फील्ड है, भूमि बहुवचन में कह रहे हैं। तो भी देखिए है, मात्राणि कर्माणि पूरम चतासन बदन की है एकादश वीर भूमि। हे वीर रहोगा तो मैं वास्तव में वीर हो समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। तो मात्राणि जो पंच महाभूत के सूक्ष्म विषय हैं, उनको रूप है, उनको मात्रा कहा जाता है। जैसे आकाश की मात्रा है शब्द, शब्द ही मूल चीज है, शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई है, आकाश से शब्द नहीं निकलता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि शब्द से आकाश की उत्पत्ति हुई है, शब्द से आकाश निकला है, और गंध से भूमि की सृष्टि हुई है, रस से जल की सृष्टि हुई है, और रूप से अग्नि की सृष्टि हुई है, और क्या, स्पर्श से वायु की सृष्टि हुई है। तो ये मात्रा कहा जाता है, मात्रा का अर्थ है असली चीज। तो 5 मात्राएं हैं, मात्राणी मतलब इंद्रियों के जो विषय है, भूमि है। मन काम करता है, मान लीजिए नासिका के द्वारा वो काम कर रहा है, सोचता है मैं सूंघता हूं, लेकिन क्या सूंघेगा? नासिका के विषय को सूंघेगा, जो विषय है वही है भूमि। और यह बहुत प्रकार की भूमि है, अनेक पुष्प हैं, दुर्गंधित वस्तुएं हैं, नाना प्रकार की गंध दुनिया में फैली हुई है, ये भूमि है, इसके लिए यही काम करता है, मतलब सूंघता है। तो सूंघना ये हो गया इसका कार्य, और क्या सूंघ रहा है ये हो गई भूमि। तो 5 प्रकार के ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय है वही है इसके लिए भूमि, और कर्माणि और कर्म, कर्मेंद्रियों के जो पांच विषय हैं जहां काम करता है वो है, आगे गिनाया गया है, कर्मेंद्रियों के फील्ड हैं जैसे पैर, ये चलना गति कहते हैं, आगे गिनाया गया अर्थ गति और पूरम, और एक है नगर। पूर्व हमेशा इस शरीर को नगर कहा गया है, इसी में जीव रह रहा है, पूरी में शयन करता है, इसी से इसको पुरुष कहते हैं। पुरुषो शयते शयनम करोति इति पुरुष, जो पूरी में शयन करे इसको, और ऐसा सो गया है कि पूरी में और अपने में भेद नहीं देख रहा है, ऐसा अहंकार रूपेण स्थित है, मैं ही यह देह हूं ऐसा मानकर सो रहा है। और सोना इसलिए कहते हैं कि यह भूला हुआ है अपने को, जैसे आदमी सो जाता है तो भूल जाता है अपने को, वैसे ही शरीर में जीव सो गया है। सो गया मतलब शरीर को ही मैं मान।